माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे जन वल्लभ गिरिवर धारे अनन्य निरंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन जमुन तीरावन चारी यमुन जमुन तीरावन चारी माधव कुंज बिहारी माधव कुंज बिहारी जन वल्लभ गिरिवर धारे यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन जमुन तीरावन चारी जमुन तीरावन चारी जय राघव माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे Yeah. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Jai Jagannath, Jai Jagannath, Balbhadra Jaya Subhadra. Jai Gauranita, Jai Gauranita, Gauranita, Jai Gauranita.
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोतर षट् श्री श्रीमद्भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की इस्कॉन डिविटी फाउंडर आचार्य शिल प्रभुपाद की उपस्थित भक्त वृंद की जय उपस्थित भक्त वृंद की जय उपस्थित भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं वंदेहं श्री गुरव श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामे निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 आप सबके बड़े आभारी हैं कि आप सब यहाँ चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव महोत्सव के दूसरे दिवस पर यहाँ पधारे हैं। आचार्य समझाते हैं कि बड़े भाग्य से भगवान की भक्ति मिलती है। बड़े भाग्य से भगवान की भक्ति मिलती है। कई कई जन्म निकल जाते हैं हम सब के, जब हम केवल ये जान पाते हैं कि भगवान कौन है। कई जन्मों के बाद अभी हमें इस जन्म में बड़ा सरल लग रहा होगा कि ये कौन सी बड़ी बात है, हम सब जानते हैं कृष्ण भगवान है। लेकिन ऐसा नहीं था। पिछले कई जन्मों में हमें ये पता नहीं था। हम घूम रहे थे, ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे, भगवान कौन है, सत्य क्या है। कई योनियों में और ऐसे घूमते घूमते भाग्य से जब भाग्य का उदय होता है, तब कभी हम ऐसे कोई व्यक्ति, ऐसे कोई गुरु, ऐसे कोई मार्ग पर आ जाते हैं जहां हमें भगवान की प्राप्ति का सही मार्ग प्राप्त होता है। और तब व्यक्ति सही दृष्टि में भाग्यवान कहलाता है, क्योंकि उसके पहले तो केवल हम भ्रमण करते हैं, इस लोक से उस लोक, कभी पृथ्वी पर, कभी स्वर्ग पर, कभी नरक में, कभी पशु योनि। हम सब इसमें घूम कर आए हैं, ये सत्य है। शास्त्र कहते हैं, ऐसा नहीं है कि यह हमारा पहला जन्म है और इसके बाद कोई जन्म नहीं होगा। कई लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है। शास्त्र इसे नहीं मानता। और शास्त्र ही क्यों, हम आसपास के उदाहरण देखकर भी ये जान सकते हैं कि ये सत्य नहीं है। जैसे कभी कोई बालक किसी बड़े अमीर घर में जन्म लेता है या फिर कोई बालक बहुत गरीब घर में लेता है, कोई बहुत सुंदर होता है, कोई बड़ा कुरूप होता है, किसी के शरीर के पूरे अंग नहीं होते, तो यह सब क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि हमने पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं उसके अनुसार शरीर मिलता है। नहीं तो भगवान पक्षपात नहीं करते कि किसी को अमीर बनाते हैं और किसी को गरीब बनाते हैं। भगवान के लिए तो हम सब समान हैं। ये जो भेद होता है ये हमारे कर्मों का फल है, इसके लिए भगवान को दोष नहीं देना चाहिए। तो इसीलिए बड़े भाग्यवान लोग होते हैं जो भगवान के मंदिर में आ पाते हैं, भगवान को प्रणाम कर पाते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वो कहते हैं कि बहुत बहुत जन्म निकल जाते हैं, बहुनाम जन्मनाम अंते, और तब कोई जान पाता है कि कृष्ण भगवान है। और तब भी भक्ति का सही मार्ग पाना कठिन होता है। भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म बढ़ने लगता है, उस समय पर मैं धर्म की स्थापना करने आता हूं। और ऐसा ही समय था, चैतन्य महाप्रभु के आने के पहले का समय। लोग धर्म को भूल चुके थे, सही धर्म की ज्ञान चला गया था। अपने मन से कोई धर्म बनाए गए, किसी व्यक्ति के द्वारा बनाए गए धर्म को धर्म माना गया, शास्त्रों के गलत अर्थ को धर्म बताया गया, अलग अलग प्रकार से हम सब धर्म का पालन करते हैं। लेकिन हमें जानना है सच्चा धर्म क्या है। चैतन्य महाप्रभु के आने के पहले धर्म लुप्त हो रहा था, और इसीलिए अपने शब्दों को सच साबित करने के लिए यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर भवति भारत। आज से करीब 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। तो ऐसा क्यों होता है कि व्यक्ति धर्म भूल जाता है? ऐसा समाज में क्यों होता है? क्यों नहीं सदैव धर्म बना रहता? क्यों नहीं हम सब जानते हैं कि धर्म क्या है? इसका कारण है, इसका कारण हमारी इच्छाएं। जब हमारी इच्छाएं भगवान की इच्छा के विरुद्ध हो जाती हैं तो हम अधर्म का पालन करने लगते हैं और उसे धर्म का नाम देते हैं। समाज में धर्म के नाम पर छल किया जाता है, धोखा दिया जाता है। सच्चा धर्म कोई नहीं सिखलाता। जो व्यक्ति खुद की मान प्रतिष्ठा चाहता हो, वो कभी भगवान की मान प्रतिष्ठा के लिए अब धर्म की स्थापना नहीं करता। क्योंकि अगर भगवान की मान प्रतिष्ठा होगी तो व्यक्ति की मान प्रतिष्ठा चली जाएगी, इसीलिए सच्चा धर्म नहीं सिखलाता। उस समय भी लोग गलत धर्म का पालन कर रहे थे, अपने मन से शास्त्रों के आधार पर अधर्म को फैला रहे थे। हमारे शास्त्र बड़े विस्तार से दिए गए हैं, सब लोगों के लिए उसमें कुछ ना कुछ है। जो भोग करना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं, शास्त्रों में उसका भी वर्णन है। इस जरा बच्चे को कोई थोड़ा संभाले, या फिर बच्चों को बाहर बिठा सकते हैं, बाहर भी व्यवस्था है, तो माता पिता जो बच्चों के साथ हैं कृपया बाहर बैठ सकते हैं। हम क्षमा चाहते हैं, हमें बार बार ऐसे बोलना पड़ता है, लेकिन क्या करें, क्योंकि एक बच्चे के कारण सबका ध्यान उस ओर बटता है, कृष्ण से हट जाता है। हम लोग बहुत थोड़ा समय कृष्ण को दे पाते हैं, और वो भी समय अगर किसी के कारण चला जाए तो बड़े दुख की बात होती है। इसीलिए हम आप सबसे क्षमा चाहते हैं, बार बार हमें बोलना पड़ता है बच्चों को संभालिए। तो चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के पहले धर्म को गलत समझा जा रहा था, जैसे हम बतला रहे थे कि कोई भोग करना चाहता है धर्म में व्यवस्था है, कोई मोक्ष प्राप्ति करना चाहता है धर्म में व्यवस्था है, कोई केवल बड़ा अच्छा जीवन जीना चाहता है, ज्यादा कोई मेहनत नहीं करना चाहता, किसी को कष्ट नहीं देना चाहता, धर्म में व्यवस्था है, शास्त्रों में व्यवस्था है। इसीलिए धर्म को समझना बड़ा कठिन है। सच्चा धर्म क्या है? चैतन्य महाप्रभु को आना पड़ा उस सच्चे धर्म को स्थापित करने के लिए। जिस सच्चे धर्म को भूल चुके थे लोग, हम जिस धर्म का पालन करते हैं वो शरीर के आधार पर होता है। आज हमने किसी परिवार में, किसी कुल में, किसी समाज में जन्म लिया है और हम उसे ही अपना मानते हैं, उसी को धर्म मानते हैं। एक प्रश्न है आप लोगों से, क्या ये निश्चित है कि अगले जन्म में आप इसी घर में, इसी कुल में, इसी परिवार में, इसी समाज में जन्म लेंगे? नहीं, कोई निश्चितता नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि कुछ भी हो जाए अगला जन्म मेरा कारवार में ही होगा। जीना यहां, मरना यहां, ऐसे कुछ है ना? ऐसे कोई निश्चित नहीं है। तो आज जिसे हम धर्म मान रहे हैं, कल शरीर बदलने पर, किसी और धर्म में जन्म लेने पर, किसी और जगह में, किसी और देश में जन्म लेने पर वो धर्म बदल जाएगा, तो फिर वो सच्चा धर्म नहीं है। क्योंकि सच्चा धर्म वो है जो कभी नहीं बदलता, उसे धर्म कहते हैं। धर्म की सही परिभाषा यह है कि व्यक्ति का वो गुण, या व्यक्ति ही क्यों, किसी भी चीज का वो गुण जो कभी नहीं बदलता, उसे धर्म कहते हैं। प्रभुपाद बहुत सुंदर उदाहरण दिया करते थे, जैसे शक्कर। शक्कर का धर्म क्या है? मिठास। क्या कोई कह सकता है कि यह शक्कर है लेकिन मीठी नहीं है? नहीं, फिर वो शक्कर ही नहीं है। शक्कर का धर्म है मिठास। पानी का धर्म है तरलता। पानी बहता है, जमता नहीं है, जहां जम जाए वो बर्फ कहलाता है। तो पानी का वो धर्म है, शक्कर का धर्म है, अग्नि का धर्म है प्रकाश देना, उष्णता देना, गर्मी देना। क्या हम कह सकते हैं कि यहां पर बड़ी तेज आग लगी है लेकिन बहुत ठंड लग रही है, गर्मी नहीं है? नहीं, ये धर्म है। तो धर्म की सही परिभाषा है वो चीज जो बदली नहीं जा सकती, वो गुण जो वस्तु से, व्यक्ति से अलग नहीं किया जा सकता, उसे धर्म कहते हैं। इसलिए धर्म आत्मा के स्तर पर होता है, शरीर नहीं। आज हम यहां हैं, कल कहीं और होंगे। इसीलिए कोई किसी भी समाज में जन्म क्यों ना ले, किसी भी देश में जन्म क्यों ना ले,
किसी भी धर्म में जन्म क्यों ना ले, सच्चा धर्म आत्मा का धर्म है और इस धर्म को सिखलाने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। वो धर्म जो आत्मा का धर्म है, जो कभी बदलता नहीं है। क्यों नहीं बदलता? आत्मा तो अलग अलग शरीर लेती है, आत्मा अलग शरीर लेती है, शरीर बदलती है, आत्मा नहीं बदलता। और इसीलिए धर्म आत्मा के स्तर पर होना चाहिए। तो जीव का धर्म क्या है? जैसे शक्कर का धर्म मिठास है, अग्नि का धर्म उष्णता है, हम सब का धर्म क्या है? ऐसी एक चीज जो हमसे अलग नहीं की जा सकती, ऐसा क्या है? और वो है सेवा। हर व्यक्ति किसी न किसी की सेवा में लगा है, चाहे वो एक भिखारी हो या किसी बहुत बड़े देश का राष्ट्रपति, वो सेवा कर रहा है। जीव का धर्म है सेवा। लेकिन किसकी सेवा और कैसे हम इस धर्म को जाने? जैसे जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट नहीं हुए थे, लोग अलग अलग धर्मों को फैला रहे थे। कुछ कह रहे थे शास्त्र के आधार पर मांस खाने में कोई गलती नहीं है, शास्त्र कहता है खा सकते हैं। कुछ कह रहे थे ये यज्ञ करने से हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, यही जीवन का उद्देश्य है। कुछ लोग कह रहे थे कि ये कृष्ण, ये गोपियां, कोई और नहीं, हम ही हैं। ऐसे लोग कहते हैं जिनकी भोग करने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ जाती है, वो भगवान में भी भोग करने की प्रवृत्ति ढूंढ लेते हैं। और इसीलिए जब वो राधा और कृष्ण के वर्णन सुनते हैं तो अपने आप को उन स्थान पर रखते हैं और इसीलिए गलत कार्यों में लगते हैं। धर्म के नाम पर अधर्म होता है। तो सच्चा धर्म क्या है? कौन सिखलाएगा यह धर्म? महाभारत में कहा गया है तर्को प्रतिष्ठो श्रुतयो विभिन्ना नेको ऋषि यस्य मतं प्रमाणम धर्मस्य तत्वं निहितं गुहाय महाजनो येन गतः सपन्था। महाभारत कहता है तर्को प्रतिष्ठो, तर्क के द्वारा ये स्थापित नहीं किया जा सकता कि धर्म क्या है। कोई तर्क करेगा, हम कहेंगे धर्म ये है, कोई कहेगा धर्म वो है, ये तर्क है। तर्क से धर्म प्रतिष्ठित नहीं होता। कोई कह सकता है मेरा धर्म श्रेष्ठ है, मेरे भगवान श्रेष्ठ हैं, एक ही मार्ग है भगवान की प्राप्ति का, ये तर्क है, कोरे तर्क। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना, तो हो सकता है शास्त्र में जो दिया गया है वो धर्म है। तो कहा गया है श्रुतयो विभिन्ना, इतने सारे शास्त्र हैं, आप कैसे समझेंगे उसे? श्रुतयो विभिन्ना, इतने सारे शास्त्र हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, वेद हैं, संहिताएं हैं, इतिहास हैं, क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या समझेंगे और फिर उसको समझना कैसे है? जैसे भगवद गीता के एक श्लोक में भगवान कहते हैं कि सारे जीव मुझ में हैं और मैं सब जीवों में हूं। बड़ी विचित्र बात है, सारे जीव मुझ में हैं और मैं सब जीवों में हूं। अर्थात जैसे कोई कह रहा है कि जैसे आप सब इस कमरे में बैठे हैं, अगर हम आपसे कहें कि हम इस कमरे में हैं और ये कमरा हम में है, आपको कुछ समझ में आएगा? या आप कहेंगे ये तो सही, ये बात तो आप सही नहीं कह रहे हैं, आप कमरे में हैं ठीक है, लेकिन कमरा आप में है, ये तो हो ही नहीं सकता। या तो कमरा आप में होगा या आप कमरे में होंगे। भगवान कहते हैं सारे जीव मुझ में हैं और मैं सारे जीवों में हूं, तो क्या सही है? क्या वो सारे जीव में है या सारे जीव उनमें है? दोनों सही है। इसको समझेंगे कैसे? तो अगर आपको शास्त्र मिल भी गए हाथ में, आप कैसे समझोगे इसीलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं मूढ़ो यम ना भी जानाति, मुझे तत्वतः जानना कठिन है। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विदिन्ना अहिंको ऋषि यस्य मतम प्रमाणम। और साथ साथ बहुत सारे ऋषि मुनि हैं, उनके अलग अलग मत हैं। भक्ति के विषय में भी हरेक का अलग अलग मत है। व्यासदेव भक्ति की परिभाषा कुछ और करते हैं, शांडिल्य कुछ और करते हैं, गर्ग मुनि कुछ और करते हैं, नारद मुनि कुछ और करते हैं। तो फिर कैसे समझे धर्म क्या है? इसीलिए अंतिम वाक्य श्लोक का बहुत महत्वपूर्ण है, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाय महाजनो येन कतः स पंथा। उसमें कहा गया है कि धर्म के तत्व को समझना है महाजनो येन गतः स पंथा। जो महाजन हैं, भक्त हैं, भगवान के दास हैं, उनके द्वारा समझना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु आए एक भक्त के रूप में, क्योंकि भक्तों के हृदय में भगवान होते हैं। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाय, और क्या है भक्तों की संपत्ति, क्या होता है भक्तों के पास? शीला प्रभुपाद जब अमेरिका गए, कौन से पैसे लेकर गए थे, क्या लेकर गए थे? कुछ नहीं था, जाने का टिकट भी नहीं था उनके पास। एक सन्यासी थे वृंदावन में, दो कमरों में रहा करते, मंदिर के दो कमरों में, और उनके गुरु ने आदेश दिया था पाश्चात्य जगत जाना, अंग्रेजी में प्रचार करना बहुत आवश्यक है, वहां के लोगों को भक्त बनाना। कुछ नहीं था प्रभुपाद के पास। कई दिनों तक, कई महीनों तक एक टिकट के लिए, वो भी पानी के जहाज में, और वो भी यात्रियों का जहाज नहीं था, सामान ले जाने वाला जहाज, उसके एक टिकट के लिए। थोड़ा बच्चों को कोई कृपया हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है आप सबसे कि इनको संभालिए, जिनके भी बच्चे हैं कृपया अपने बच्चों को लेकर बाहर बैठिए, बाहर व्यवस्था है, स्क्रीन लगा है, यहां बच्चों के खेलने का स्थान नहीं है, अभी कृष्ण की कथा हो रही है। बच्चे हैं, बच्चों को नहीं समझ में आता है, इसलिए बच्चों को कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन माता पिता को समझना चाहिए। कभी कभी माता पिता इसीलिए मंदिर ही नहीं आते हैं, कहते हैं बच्चा बड़ा परेशान करता है, प्रभु जी बार बार प्रवचन में बोल देते हैं, अब नहीं जाएंगे अगली बार। नहीं, व्यवस्था हम लोग कर रहे, जैसे रविवार को भी व्यवस्था करेंगे कि बच्चों के लिए वहां पर कुछ अलग कार्यक्रम होगा, तो इसीलिए आज व्यवस्था नहीं की है बच्चों की अलग, तो इसलिए बच्चों को तो कुछ एंगेजमेंट चाहिए। मन की तरह है, हमारा मन भी ऐसे ही चंचल है, अगर आप उसको ठीक से भक्ति में नहीं लगाओगे तो ऐसे ही भागता रहेगा। तो चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में इसीलिए आए कि भक्तों की क्या संपत्ति है, श्री कृष्ण, और कोई संपत्ति नहीं। प्रभुपाद जब गए क्या संपत्ति थी, कुछ डॉलर वो भी किसी ने दिए थे बस। एक महिला थी जो एक जहाज की कंपनी की मालिक थी, शिला प्रभुपाद सन्यासी थे, सन्यासियों के लिए महिलाओं के पास जाना, महिलाओं से ज्यादा बात करना सही नहीं है, उनको मना किया जाता है, लेकिन शिला प्रभुपाद सन्यासी होते हुए हर रोज उनके ऑफिस के बाहर जाकर बैठा करते थे, उनके सेक्रेटरी से कहते थे एक बार मुझे उनसे मिलने दो, मैं मिलना चाहता हूं। देखिए, सन्यासी को स्त्रियों से मिलना नहीं है, यहां प्रभुपाद कह रहे मैं मिलना चाहता हूं रोज, और सेक्रेटरी कहते थे स्वामी जी अभी मैडम बिजी हैं, आप चले जाइए, लेकिन फिर वो रोज आते, नहीं मुझे मिलना है, मुझे एक टिकट चाहिए अमेरिका जाने के लिए। तो ऐसे कई महीनों तक, कई दिनों तक मांग मांग कर उन्होंने वो टिकट लिया। क्या था उनके पास? कोई धन नहीं था, कोई संपत्ति नहीं थी, कोई ऐश्वर्य नहीं था। कृष्ण थे, हृदय में कृष्ण थे, और केवल कृष्ण को लेकर गए, विश्वास को लेकर गए, श्रद्धा को लेकर गए। और आज देखिए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ सारे जगत में कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। एक व्यक्ति की श्रद्धा सारे जगत को बदल सकती है। क्यों? हृदय में कृष्ण है। और इसीलिए महाजनों ये गतः सपन था, जो भक्त मार्ग बतलाए उस पर चलना चाहिए। और यही कारण था कि चैतन्य महाप्रभु भक्त रूप में आए, ये दिखलाने के लिए कि कितना प्रेम है उन्हें अपने भक्तों से और उनके हृदय में वो रहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, कल हम लोगों ने चर्चा की थी, धर्म की स्थापना, युग धर्म को बतलाने आए थे, उस धर्म को जो लोग भूल चुके हैं, और सच्चा धर्म का मार्ग देने आए। इसीलिए बारंबार इस बात को जान लीजिए, धर्म के सिद्धांत बड़े जटिल हैं। सरल है धर्म अगर भक्तों के मार्ग पर चला जाए, कठिन है धर्म जब अपने मन से उसका पालन किया जाए। चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, थोड़े समय तक तो वो साधारण लीला करते रहे, और फिर उन्होंने संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ किया जिस कार्य के लिए वो आए थे। और ऐसा नहीं है कि उनके आने के पहले इसका कहीं वर्णन नहीं था। कली संतरण उपनिषद में कहा गया है, ब्रह्मा जी और नारद मुनि का संवाद है। नारद मुनि ने प्रश्न किया ब्रह्मा जी से, ये उपनिषद में कहा गया है। उन्होंने पूछा, ब्रह्मा जी कलयुग में लोगों का क्या होगा? देखिए लोग तपस्या नहीं कर सकते, और हम सब जानते हैं ये भागवत में भी कहा गया है कि कलयुग में लोगों की बुद्धि कम होगी। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपदिता प्राण अल्पायुष सभ्य कलयुगस्मिन् युगे जना। अल्पायु, हमारी आयु बहुत छोटी है कलयुग में, प्राण अल्पायुष सभ्य, और ऊपर से हमारी बुद्धि कम है, दुर्भाग्य है हमारा। तो ब्रह्मा जी से पूछा नारद मुनि ने कि इनका कैसे उद्धार होगा कलयुग के जीवों का? ये ना तो तपस्या कर सकते हैं हिमालय में जाकर। अब आप बताइए आप में से कितने लोग तैयार हैं हिमालय पर एक पांव पर खड़े होकर बर्फ में, गर्मी में, गर्मी नहीं होती है वहां, केवल बर्फ होती है, तो बर्फ में एक पांव पर खड़े होकर 1000 साल तक कम से कम तपस्या कर सके? तैयार हैं? हम सारी व्यवस्था करेंगे यहां से जाने का, आने का, सब आने का सवाल ही नहीं होता, 1000 साल तक आने में जाने की व्यवस्था हम कर देंगे। कौन तैयार है? कोई नहीं। और आप ही नहीं, ये अगर प्रश्न सारे भारत में सारी दुनिया से किया जाए तो भी कोई तैयार नहीं। तो नारद मुनि ने कहा इन लोगों का क्या होगा, तपस्या तो कर नहीं सकते। तो ब्रह्मा जी ने कहा, इति षोडशकम नाम नाम कली कलमश नाशनम, कली के कलमश को नाश करने वाला ये एक मंत्र मैं तुम्हें देता हूं नारद। तो ये कब हुआ, ये उपनिषद कब कहे गए? चैतन्य महाप्रभु के आने के हजारों साल पहले ब्रह्मा जी ने कह दिया कि ये जो 16 शब्दों का महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कली कलमश नाशनम, केवल यही कली के कलमश का नाश करेगा। और उसी चीज को बतलाने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने भक्त का रूप लिया। तो चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ किया, अपने भक्तों को आदेश दिया, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, जाओ गली गली जाओ, घर घर जाओ, भिक्षा मांगो, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। तो सब जाने लगे, विशेषतः नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर, ये सब जाने लगे, बाहर जाते सड़कों पर लोगों को कहते, प्रचार करते, कहते आप नाम लीजिए। कई कई भक्त तो बड़ा अच्छा तरीका अपनाते थे लोगों से नाम कहलवाने का। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था बस कैसे भी इनके मुख से एक बार कृष्ण का नाम निकलना चाहिए बस। तो एक बार एक भक्त थे, उन्होंने सोचा कि ये जो शहर का काजी है ये नाम नहीं लेता, तो मुसलमान था, मतलब नाम नहीं लूंगा। तो उसने सोचा कि इनसे नाम निकलवाना चाहिए इनके मुख से। तो कई बार उनसे कहा, उन्होंने कहा नहीं। तो एक दिन रात को 12 बजे उनके घर पर पहुंच गए, काजी सो रहे थे। उन्होंने जाके खटखटाया, काजी बाहर आओ। तो काजी घबरा गया, रात को 12 बजे क्या है? काजी आए, क्या बात है? बोले तुम्हें हरे कृष्णा बोलना होगा, क्यों भगवान का नाम नहीं लेते हो, कृष्ण का नाम? काजी ने कहा नहीं लूंगा, तुम चाहे कुछ भी कर लो। तो उस समय इनको बड़ा गुस्सा आया, अगर तुम भगवान का नाम नहीं लोगे मैं अपने प्राण दे दूंगा। देखा तुम अपने प्राण दे दो लेकिन मैं हरे कृष्णा नहीं बोलूंगा। तो उसने कहा बहुत बहुत धन्यवाद, बस अब मेरा काम हो गया, आप जाके सो जाइए। तो भक्त ने ऐसे प्रयास किए कि बस इनके मुख से कृष्ण का नाम निकलना, एक बार बस मुख से कृष्ण का नाम निकल जाए। ऐसे ही प्रचार करते करते नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर एक बाजार में पहुंचे और उन्होंने देखा कि बहुत भीड़ लगी है और लोग देख रहे हैं कुछ, और बीच में दो लोग खड़े हैं, वो दो ब्राह्मणों के पुत्र थे, ब्राह्मण परिवार से। तो नित्यानंद प्रभु ने पूछा कौन है ये लोग, क्या हो रहा है? तो लोगों ने बताया ये ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए हैं लेकिन कार्य सारे असुरों के करते हैं, लोगों को मारना, धोखा देना, अत्याचार करना, पैसा लूटना, शराब पीना, ये सारे बुरे काम इनके हैं। और अभी भी शराब पीकर सड़क पर ये लोग हंगामा कर रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि इनके मुख से भगवान का नाम निकालना चाहिए। वैसे नित्यानंद प्रभु ऐसी ऐसी जगह पर जाते थे भगवान के नाम को बोलने के लिए, बुलवाने के लिए, कि जो उनके साथ भक्त जाते थे वो कहते थे अगली बार से इनके साथ नहीं जाऊंगा। एक बार नित्यानंद प्रभु जा रहे थे, शराब खाना था, अंदर शराबी थे सारे, और नित्यानंद प्रभु ने कहा यहां जाके बोलेंगे सबको, और शराब खाने में घुस गए सारे शराबी, और नित्यानंद प्रभु ने उन सब से हरे कृष्ण बुलवा दिया। तो यहां पर नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि हाँ ये दो बदमाश लोग हैं, अगर इन्होंने कृष्ण का नाम लेना शुरू कर दिया तो बहुत अच्छा होगा। ऐसा होता है ना कि लोग कहेंगे अरे इतने पापी लोग भगवान का नाम लेने लग गए, बहुत अच्छा। तो नित्यानंद प्रभु ने उनके साथ हरिदास ठाकुर से कहा चलो जाएंगे। तो आए, अब वो लोग नशे में थे, उनका नाम था जगाई और मधाई। वैसे उनका नाम जगदानंद था लेकिन ये पी पाकर जगाई मधाई हो गए थे। ऐसा हो जाता है ना, लोगों का नाम अच्छा होता है वो अपना नाम कुछ शॉर्ट कर लेते हैं, है ना? जैसे कृष्णानंद किसी का है तो कैंडी कर लेता है। हाँ आपको पता नहीं है, यही है पाश्चात्य जगत में जाइए, इतना अच्छा नाम होता है उसको छोटा करके बड़ा अजीब कर लेते हैं, वो नाम बोला भी नहीं जाता कि कैसा नाम है, तो समझ में नहीं आता कैसा नाम है। तो जगाई मधाई हो गया था। तो जगाई मधाई, तो उस समय नित्यानंद प्रभु ने कहा जाकर उन लोगों दोनों के हाथ जोड़, दोनों के सामने हाथ जोड़े और उनसे कहा कि आप कृष्ण का नाम लो। और उन्होंने जैसे ही सुना तो कृष्ण का नाम तो दूर मुख से बड़े अपशब्द निकालने लगे, भागने लगे मारने के लिए, और नित्यानंद प्रभु भी भागे, हरिदास ठाकुर भी भागे वहां से। तो शाम के समय जब वापस आए तो चैतन्य महाप्रभु पूछ रहे थे कहां कहां गए। तो हरिदास ठाकुर ने कहा महाप्रभु कल से मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा। नित्यानंद प्रभु के बोले क्यों? अरे ये कहीं भी चले जाते हैं प्रचार करने, आज मार खाते खाते बच गए हम लोग। तो चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए, बोले बहुत अच्छा है, ऐसे लोगों से हरे कृष्ण बोलना चाहिए। हरिदास ठाकुर बोलने लगे, वो तो ठीक है, ये तो कभी कभी पानी में कूद कर घड़ियाल के मुख से हरे कृष्ण बुलवाते हैं, उसका क्या है, कभी मैं साथ में चला गया और घड़ियाल तो हरे कृष्ण बोलने की जगह अगर मुख बंद हो गया तो अगले दिन नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि आज उन लोगों से हरे कृष्ण बुलवाना ही है। तो उन्होंने देखा वो लोग सड़क पर थे, दोनों शराब पिए हुए थे। तो नित्यानंद प्रभु गए, बड़ी नम्रता से नित्यानंद प्रभु ने उन लोगों से कहा, उनमें से एक जगाई, उससे कहा कि कृष्ण का नाम लो। तो जैसे वो कह रहे थे, दूसरा भाई पिए हुए था, उसने मिट्टी का मटका था हाथ में, जोर से उनके सर पर मार दिया नित्यानंद प्रभु, इतनी जोर से लगा खून निकल आया। और जैसे खून आया वो तो नशे में था और मारने गया, लेकिन उस समय जगाई ने रोक लिया उसके भाई ने, अरे नहीं रहने दो, साधु आदमी है, क्यों मारना इनको, बस इतना किया। और नित्यानंद प्रभु ने वो देखा कि हाँ इसने इतना अच्छा कार्य किया है। तो अभी ये चल रहा था, वो मार रहे थे, अपशब्द बोल रहे थे, और नित्यानंद प्रभु उनसे प्रार्थना कर रहे थे कि नहीं आप कृष्ण का नाम लो। चैतन्य महाप्रभु को पता चला कि मेरे भक्त नित्यानंद प्रभु, उनको मार दिया है, उनके सर से खून निकल रहा है, तुरंत पहुंच गए वहां। और इस लीला में अभी तक उन्होंने अपना भगवंत रूप नहीं दिखाया था, लेकिन अब वो रोक नहीं पाए, तुरंत सुदर्शन चक्र आ गया और उन्होंने कहा अभी लोगों को मार देता हूं। क्रोध में आ गए, भगवान अपने ऊपर हुए अत्याचार अपराध को सहन कर सकते हैं, भक्तों के ऊपर नहीं। और भक्त वो अपने ऊपर अपराध सहन कर लेते हैं, लेकिन दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते, ये भक्त है। ऐसे कई उदाहरण हैं, प्रहलाद महाराज, उनके पिता ने कितना ही कष्ट नहीं दिया उन्हें, कितना कष्ट, पर्वत से गिरवाया, समुद्र में फिकवाया, सांपों के बीच फिकवा दिया, हाथियों के बीच फिकवा दिया, तलवार से काटने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज ने भगवान से क्या मांगा। जब नरसिंह देव आए और उन्होंने कहा मांगो कुछ, तो प्रहलाद महाराज ने कहा मेरे पिता को क्षमा कर दीजिए, मेरे पिता का उद्धार कर दीजिए, ये भक्त है। कितना ही कष्ट क्यों नहीं दिया, उन्होंने कभी विरोध नहीं किया। हरिदास ठाकुर भगवान के महान भक्त थे, हर समय भगवान का नाम उनके मुख से निकलता था, नियम था उनका, दिन में 300,000 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे, 300,000 नाम लिया करते थे भगवान के, 300,000 नाम, ये नियम था उनका। और वो हरिदास ठाकुर, एक समय मुसलमान राजा ने, नवाब ने पकड़ लिया उन्हें, क्योंकि वो मुसलमान परिवार से थे, यवन परिवार से थे। नवाब को कहा गया कि देखिए मुसलमान होकर यह कृष्ण का नाम लेता है, दंड देना चाहिए इसको। हरिदास ठाकुर को पकड़ लिया गया, राजा के सामने, नवाब के सामने लाया गया। नवाब ने कहा देखो कलमा पढ़ो, ये बंद करो कृष्ण बोलना, तुम मुसलमान हो, तुम्हें नमाज पढ़नी चाहिए, और ये क्या कृष्ण का नाम ले रहे हो, देखो अभी भी तुम अगर ये सब छोड़ दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, नहीं तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। आप सोचिए हम में से कितने लोग ऐसे समय में हरे कृष्ण बोलेंगे। अगर आपको कहा जाए, कोई पुलिस वाले को पकड़ कर कहीं पर ऐसे बोले, तलवार हाथ में लेकर, बंदूक हाथ में लेकर, कि हरे कृष्ण बोलना बंद करो और कोई भी दूसरा चीज कहे ये बोलो, नहीं तो हम तुम्हें गोली मार देंगे, तो आप बोलोगे हरे कृष्ण तो मैं बचपन से नहीं बोलता था, ये हरे कृष्ण वालों ने जबरदस्ती बुलवा दिया, वो गलती से एक दिन इस्कॉन मंदिर चला गया था बस। सही है ना, मेरे पिताजी ने कभी हरे कृष्ण नहीं बोला, मेरे दादा ने नहीं बोला, हमारे खानदान में किसी ने नहीं बोला। आप बोलिए मैं आपके जय जयकार बोलता हूं जीवन भर, आपका नाम क्या है, बोले राजेश, ठीक है जय राजेश जय राजेश, लेकिन कृष्ण नहीं बोलो। लेकिन हरिदास ठाकुर, उन्होंने क्या उत्तर दिया, नवाब कह रहे, वो जानते थे कि अगर नवाब कह रहे तो दंड दे सकता है, मार सकता है, हरिदास ठाकुर ने कहा इस शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, हर टुकड़े से कृष्ण का नाम निकलेगा। यह भक्त है। और नवाब ने कहा ठीक है ले जाओ इनको 22 बाजारों में, उस समय उनके जो राज्य थे उसमें 22 बाजार थे, उन्होंने कहा हर एक बाजार में इसको कोड़े लगाओ ताकि सब देखें कि कृष्ण का नाम लेने से क्या दंड मिलता है, ले जाओ इसको जल्लादों को दिया। आप जानते हैं जल्लाद, आपने शायद देखे नहीं होंगे, कलयुग में जल्लाद होते नहीं है शायद, मतलब जल्लाद बड़े हट्टे कट्टे बड़े, और एक मार दे तो हम लोग कलयुग की खटारा गाड़ियां हैं हमारी, गाड़ियां मतलब ये गाड़ियां वो नहीं, सही में कलयुग की है। सतयुग वगैरह में जो गाड़ियां होती थी हमारे पास, मतलब जो शरीर होते थे वो मर्सिडीज बेंज की तरह होते थे, धीरे धीरे खराब होते होते अभी कलयुग में धक्का स्टार्टर पे आ गए हम लोग। है ना, धक्का स्टार्टर देखी है आपने, गाड़ियां आजकल नहीं होती होंगी, पहले होती थी, जब तक धक्का नहीं मारो स्टार्ट नहीं होती थी, है ना। एक बार हमें एक भक्त बता रहे थे कि कभी कभी लोग मंदिर में दान देते हैं, बोले एक बार एक व्यक्ति हमारे पास है, प्रभु जी मुझे एक गाड़ी दान देनी है मंदिर में, तो बोले मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मंदिर में गाड़ी दान देनी है, तो कौन सी गाड़ी है। तो एक्चुअली वो गाड़ी थी कि उनके घर पे बहुत दिनों से खड़ी थी, धक्के के बिना स्टार्ट नहीं होती थी, तो उन्होंने सोचा कि घर में लोग कम है, मंदिर में ब्रह्मचारी बहुत है धक्का मारने के लिए, तो मंदिर में दान दे देते हैं। तो 22 बाजारों में इनको पिटवाना चाहिए, दंड दे दिया। और हरिदास ठाकुर को कोड़े जल्लादों के द्वारा, पहले कोड़े मारे जाते थे, चमड़े का बना होता था, एक पड़ने से खाल उखड़ आती थी पूरी, और उन दोनों ने 22 बाजारों में लगातार उनको पीटा, क्योंकि उनको आदेश मिला था जब तक मरे नहीं इसको पीटते रहना, और पीट रहे थे, बंद करो कृष्ण का नाम लेना, बंद करो कृष्ण का नाम लेना। हरिदास ठाकुर ने बंद नहीं किया, और जो उन्हें पीट रहे थे हरिदास ठाकुर उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान इन लोगों को कुछ नहीं कहना, क्योंकि वो जानते थे कि भगवान अपने ऊपर हुए अत्याचार को सहन कर सकते हैं लेकिन भक्त के ऊपर नहीं, इसलिए प्रार्थना कर रहे थे इनको कुछ नहीं कहना, इनको कुछ नहीं करना, ये नहीं जानते हैं क्या कर रहे हैं। जिस व्यक्ति को 22 बाजार में कोड़ों से पीटा जा रहा हो और वो व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है पीटने वालों के लिए कि इनको कुछ नहीं करना, ये भक्त है। जीसस, उनको सूली पर चढ़ा दिया गया, सूली नहीं क्रॉस पर, जिंदा उनके हाथों में उनके पांव में कीले ठोक दी गई, लेकिन उन्होंने भी यही प्रार्थना की कि हे भगवान ये लोग जानते नहीं है क्या कर रहे हैं, इनको क्षमा कर दो, ये भक्त है। तो इसलिए भक्त हमेशा दूसरों के लिए, दूसरों के लाभ के लिए कार्य करना चाहते हैं, दूसरों को सदैव उनका हृदय दूसरों के लिए, दूसरों के लाभ के लिए होता है, इसलिए वो सच्चा धर्म दे सकते हैं। और नित्यानंद प्रभु ने यही किया, उन्होंने रोक लिया भगवान को, सुदर्शन चक्र निकाला था, भगवान को रोक लिया, उन्होंने कहा इस अवतार में इस समय आप किसी को मारने के लिए नहीं आए, असुरों को मारने नहीं आए हैं, लेकिन व्यक्ति के हृदय में जो आसुरी प्रवृत्ति है उसको मारने के लिए आए हैं, इसलिए सुदर्शन नहीं चलाइए, पांव पकड़ लिए उन्होंने। और जब जगाई मधाई ने देखा तो उन्होंने भी पांव पकड़ लिए, क्षमा मांगी, चैतन्य महाप्रभु ने क्षमा किया, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी, उन्होंने कहा मैं तुम्हें क्षमा करता हूं लेकिन आगे से फिर कभी अपराध नहीं करना। हम सबको भी ये सीखना चाहिए, हो सकता है हमने जीवन में बहुत अपराध किए हैं, बहुत पाप किए हैं, लेकिन एक बार अगर हम कृष्ण की शरण आ जाएं, गंभीरता से भक्ति का मार्ग ले लें, तब हमें फिर पाप नहीं करने चाहिए, और तब चैतन्य महाप्रभु क्षमा करेंगे। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनको कहा कृष्ण का नाम लो, और सबने देखा कि चैतन्य महाप्रभु का शरीर काला हो गया, क्योंकि जो उनके शरीर से पाप निकले वो सब चैतन्य महाप्रभु ने ग्रहण कर लिए। तो हम सब ने पाप किए हैं, ऐसा कोई नहीं। हम यहां हैं, इस जगत में हैं, ये प्रमाण है कि हम पापी हैं, अन्यथा यहां नहीं होते, हम आध्यात्मिक जगत में होते। लेकिन अब हमें बंद करने चाहिए, सही धर्म को सीखना चाहिए, वो धर्म जो भक्त सिखलाते हैं, वो धर्म जो शास्त्रों का सार है, वो धर्म जिसे देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। हरि नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस धर्म को देने आए हैं चैतन्य महाप्रभु, युग धर्म को देने आए हैं कि केवल ये नाम लीजिए और कुछ नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कोई तपस्या नहीं, कोई वेद पठन नहीं, केवल नाम। कलर दोषो निधे राजन अस्ति ही एक महान गुण, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। मुक्ति का एक ही मार्ग है, श्री कृष्ण का नाम, और बहुत सरल है। हो सकता है हम कोई धर्म पालन करते हो सकता है हमारे बचपन से या हमारे परंपरा में, हमारे परिवार में कोई परंपरा चलती आ रही हो, लेकिन अब सच्चा धर्म, जीव का धर्म सेवा, और किसकी सेवा? भगवान की। चैतन्य महाप्रभु ने समझाया, जीवेरा स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास, यही हमारा स्वरूप है, यही भक्ति है, और यही हमें संतुष्टि, शांति, समृद्धि इस जीवन में ला सकती है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने उन दो पापियों का उद्धार किया, ऐसे असंख्य लोगों का उद्धार चैतन्य महाप्रभु ने किया। वो सड़कों पर कीर्तन करते, लोगों से मिलते, उनको कृष्ण का नाम लेने के लिए प्रेरित करते। और इतना ही नहीं, चैतन्य महाप्रभु एक समय जंगल से जा रहे थे जहां पे प्राणी थे, शेर, हिरण इत्यादि, और चैतन्य महाप्रभु ने वहां कीर्तन किया, और उनके कीर्तन में शेर हिरण एक साथ मिलकर नाचने लगे। ये हरि नाम की शक्ति है, भगवान के नाम में बहुत शक्ति है, केवल हमारी श्रद्धा में कमी है। भगवान के नाम में शक्ति में कोई कमी नहीं है, जितनी हमारी श्रद्धा बढ़ेगी उतनी नाम की महिमा हमारे समक्ष प्रकट होगी। इसलिए आप सबसे विनती है कि चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव दिवस पर ये प्रण लें कि आज से भगवान का नाम लेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने 24 वर्ष की छोटी सी आयु में संन्यास लिया, केवल एक उद्देश्य से कि लोग अपराध नहीं करें और मैं लोगों को भगवान का नाम दे सकूं। 6 वर्ष तक दक्षिण भारत का भ्रमण किया, कई जगहों पर गए, लोगों को भक्त बनाया, उनको भगवान का नाम दिया, और फिर 18 वर्ष तक जगन्नाथपुरी में रहे और 48 वर्ष केवल इस पृथ्वी पर रहे। और फिर उन्होंने, उनकी लीला भी बहुत सुंदर है, समाप्त की, कीर्तन करते हुए गोपीनाथ जी का विग्रह है उसमें प्रवेश कर गए, क्योंकि वो तो है ही, गोपीनाथ कृष्ण हैं। आज भी वो मंदिर जगन्नाथपुरी में है, गोपीनाथ जी का मंदिर। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य यही था कि सबको कृष्ण का नाम दे सके, इसलिए 24 वर्ष की छोटी सी आयु में संन्यास लिया उन्होंने, और जगह जगह जाकर लोगों को प्रेरित किया भगवान का नाम लेने के लिए। तो आज के दिवस पर हम यही प्रार्थना भगवान से कर सकते हैं, हम यही आशा आज के दिवस पर कर सकते हैं कि हम सबके हृदय में भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा और भगवान का प्रेम हम सबके हृदय में जागे, ताकि हम भी बड़ी श्रद्धा से प्रेम से भगवान का नाम ले सकें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम
राम राम हरे। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। किसी के कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई जिज्ञासा मन में है? कोई भी प्रश्न कुछ मन में आया हो आपके? ठीक है, तो आज चैतन्य महाप्रभु के गुणगान में एक छोटा सा भजन गाना चाहते हैं। तो आप सबको भी ये भजन के पेपर्स दिए जाएंगे, थोड़े दो तीन लोगों को दे दीजिए ताकि जल्दी बांट दें। बहुत छोटा भजन है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण भजन है, चैतन्य महाप्रभु की करुणा को दर्शाने वाला, तो इसको गाएंगे और फिर थोड़ी सूचनाएं होंगी और प्रसाद। हरे कृष्णा तो शायद थोड़े कम होंगे अगर पेपर, तो दो लोग एक पेपर में देख सकते हैं भजन को। तो अभी भजन होगा और भजन के बाद, क्योंकि आज उत्सव चैतन्य महाप्रभु के जन्म का है, तो जैसे प्रथा होती है कि जन्म के बाद बच्चे को पालने में बिठाया जाता है और उसको झुलाया जाता है, हम लोग सब जन्माष्टमी पर भी करते हैं, तो अभी यहाँ पर भी ये व्यवस्था आपके लिए की जा रही है। तो अभी भजन गाएंगे, भजन के बाद कीर्तन होगा। कीर्तन करते समय आप सबके लिए, जब आपको बताया जाए तब आप लोग लाइन से भगवान के झूले को भी झुला सकेंगे आज के दिवस पर। आपसे प्रार्थना यही है कि इस भजन को बड़े श्रद्धा और प्रेम से आप गाएं, सही भाव में अर्थ पर ध्यान करते हुए, ताकि हमें कृपा भगवान की प्राप्त हो सके। और कृपया इस पूरे भजन के समय आप लोग शांति बनाए रखिएगा, केवल भगवान का नाम ही लीजिएगा, इस भजन को ही गाइए और कोई बात नहीं कीजिएगा। परम करुणा परम
Da
राम करुणा दुर्जाना पिता गौरचंदा अवतार सर शिरोमणि केवल आनंद
भगवान के करुणा का वर्णन है, परम करुणा प्रभु जन। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, ये दोनों लोग, दोनों भगवान परम करुणा को लेकर आए हैं। परम करुणा अर्थात इनकी करुणा के आगे अब और कोई करुणा नहीं है। परम करुणा प्रभु देव जन। और क्यों है ये परम करुणा? सब अवतार सर शिरोमणि, भगवान के जितने भी अवतार हैं उन सब ने भक्ति का मार्ग दिया, लेकिन उस भक्ति का सार, उसको सरल बनाया चैतन्य महाप्रभु। और कैसा मार्ग दिया? केवल आनंद चंदा, केवल आनंद चंदा, भज भज भाई गगननिताई, सुदृढ़ विश्वास करी। भज 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 भाई गगननिताई, सुदृढ़ विश्वास करी। भज विषय छाड़िया, विषय छाड़िया, सुर समझिया, केवल हरि हरि। विषय छाड़िया, चैतन्य महाप्रभु का भजन भज भज भाई प्रार्थना है, सुदृढ़ विश्वास, पूरा विश्वास होना चाहिए हमें भगवान पर, भगवान की भक्ति पर। और वो विश्वास आएगा जब हम विषयों को छोड़ेंगे, विषय छाड़िया से रसे मजिया। विषय क्या है? हमारी वासनाएं, हमारा लोभ, कुछ पाने की कामना, भगवान को ढूंढने की इच्छा। ऐसे विषयों को जब हम छोड़ेंगे जो हमें केवल कष्ट देते हैं, धन कमाने की लालसा, मान प्रतिष्ठा की लालसा, एक दूसरे को धोखा देने की लालसा, विषय इच्छाएं, और भगवान की भक्ति में लगेंगे। लेकिन ये कब होगा, कब हम विषयों को छोड़ सकेंगे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये कब होगा। मुखे बोलो हरि हरि, मुखे बोलो हरि हरि, मुखे बोलो हरि हरि, मुखे बोलो हरि हरि, पशुपक्षी जोड़े आशन दुआरे सुने गा सुने गाथा, पशुपक्षी जोड़े आशन दुआरे सुने गा सुने गाथा, ये हम सबके लिए बहुत सुंदर वर्णन है। पशु पक्षी झूले कहा जा रहा है कि चैतन्य महाप्रभु से ज्यादा कृपालु और दया करने वाले कोई नहीं है। देखो रे भाई त्रिभुवन नाई उन्होंने दयालुता, त्रिभुवन में केवल पृथ्वी पर ही नहीं सारे ब्रह्मांड में उनसे दयालु उनसे कृपालु कोई नहीं है। उनकी कृपा केवल मनुष्यों पर ही नहीं पशु पक्षी झूले हैं, पशु पक्षियों पर है, पाषाण विदरे पत्थर भी पिघला देती है, ऐसी उनकी कथा है। पहले का तात्पर्य है हम सबके हृदय पत्थर के समान है और इस पत्थर को पिघला सकती है चैतन्य महाप्रभु की कथा। पशु पक्षी जुड़े पाषाण हृदय, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा पत्थर जैसा हृदय पिघल जाए कोमल हो जाए और जिसमें कृष्ण आकर बैठ सके, तो हमें सुने जर भूले गाथा, सुने जर भूले गाथा, इस संसार चक्र में पड़े हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याध है, बारंबार जन्म है और बारंबार मृत्यु। संसार मजिया रोहिल पड़िया से पदे नहीं लो आशा। कोई आशा नहीं है कि हमें आनंद प्राप्त हो, हमें भगवान प्राप्त हो, संसार चक्र से मुक्ति प्राप्त हो, इसलिए प्रार्थना है। अपन कर्म अभी तक मुझे कष्ट मिले, शरीर मिला अपने अपने कर्मों के द्वारा, अपन कर्म भंगाए शरीर, जो कष्ट मैं पा रहा हूं ये मेरे कर्मों का फल है। लेकिन अब आपसे प्रार्थना है हे कृष्ण, हे चैतन्य महाप्रभु, कि अब आप अपने इस दास पर कृपा करें। बहुत जन्मों तक कष्ट सह लिया, कई कई जन्म ले लिए, कई योनियों में घूम लिया, अब मुक्त होना चाहता हूं, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप अपनी करुणा इस पर बरसाएं। परम करुणा
Hari 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 Hari
अच्छी तरह से भजन में आप सबने संग दिया तो भगवान का पालना तैयार है। थोड़ी सूचनाएं होंगी, उसके बाद कीर्तन के साथ हम लोग भगवान को पालने में चला सकेंगे। तो आप सबसे विनती है कि रविवार के कार्यक्रम में भी आप आइए। सोमवार से महाभारत की कथा प्रारंभ कर रहे हैं, संपूर्ण महाभारत, तो हर सोमवार को होगा। पता नहीं कितना समय लगेगा पूरी महाभारत करने को, 1,00,000 श्लोक हैं, तो श्लोक तो नहीं पढ़ेंगे, कथा होगी। बहुत रोचक कथा है, ज्ञान देने वाली कथा है और बहुत सारे विवाद भी हैं उसमें। तो धीरे धीरे हर सोमवार को ये कथा को कहेंगे। तो पहला दिन इस सोमवार को है, आप सबसे विनती है शाम के समय थोड़ा जल्दी, आज की तरह नहीं लेकिन थोड़ा जल्दी आए ताकि हम लोग समय पर इसको कर सकें। और इस दोनों दिवस के उत्सव में आने के लिए आप सबके बड़े आभारी हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपके इस प्रयास पर जो आपने यहाँ किया, आप आए अपने घर से यहाँ पर भगवान की सेवा के लिए, भगवान की कथा को सुना, भगवान के नाम को लिया। भगवान से प्रार्थना है कि आपके हृदय में भगवान की भक्ति जागृत हो और भगवान सदैव अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें।
हरे कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ यानी कि इस्कॉन के इस कारोबार केंद्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 2 दिनों से लगातार आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं, सुंदर गौर हरि भगवान की कथाएं सुन रहे हैं और बड़े ध्यान पूर्वक इस पूरे आयोजन में सहयोग दे रहे हैं। तो आप सभी के इन सेवाओं के लिए, आपके यहाँ पर आने के लिए आप सभी का स्वागत करेंगे। तीन बार हृदय से जोर से हरि बोल बोल के, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और अभी कुछ सूचनाएं हैं, जैसे कि प्रभु ने बताया 9 मार्च से, यानी कि सोमवार, 9 मार्च को सोमवार है, उस दिन से प्रति सप्ताह माँ भारत की कक्षाएं शुरू होंगी शाम 6:30 बजे से। ये महाभारत, संपूर्ण महाभारत होगी बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल उसकी जो शुरुआत है वहाँ से महाभारत सुनाई जाएगी। तो आप में से जो भी लोग इच्छुक हैं ये कथा सुनने के, कृपया आइए। बाहर पैम्पलेट्स भी हैं इसके, हमने प्रचार के लिए पैम्पलेट्स बनाए हैं, तो आप उनको अपने संबंधियों को, मित्रगणों को बांट सकते हैं और आप भी प्रचार कार्य में सहयोग कर सकते हैं, उनको इस कथा के लिए आमंत्रण दे सकते हैं। तो ये हर सप्ताह सोमवार को शाम को 6:30 बजे से प्रारंभ होगा। इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर प्रति सप्ताह रविवार का कार्यक्रम करते हैं, जैसा कि आप में से बहुत भक्त आते भी होंगे। वैसे हम जानना चाहते हैं आज कितने भक्त पहली बार इस मंदिर में आए, कृपया हाथ खड़ा कीजिए अपना। कोई है ऐसे भक्त जो पहली बार मंदिर में आए हैं? अच्छा, अगर डर के मारे हाथ खड़ा नहीं कर रहे हैं फिर भी उनका बहुत स्वागत है। अगर आप लोग चाहें तो आपको मंदिर के जो कार्यक्रम हैं उनकी सारणी आपको आपके पास पहुंच सकती है, अगर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर बाहर लिखवा दें तो जो भी मंदिर के विभिन्न प्रोग्राम्स होते हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। जैसे कि ये संडे का, रविवार का प्रोग्राम है, इसमें 12:30 बजे से कीर्तन प्रारंभ होता है और फिर 1 बजे प्रवचन और 2 बजे से प्रसाद की व्यवस्था है सभी भक्तों के लिए। तो कृपया आप और अपने मित्रगणों, संबंधियों, परिवार के साथ उसमें आइए और भगवान के सुंदर कथाओं का लाभ उठाइए। और हम उन उदार भक्तों का भी धन्यवाद देना चाहते हैं, बड़ा आभार प्रकट करना चाहते हैं जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में हमारा सहयोग किया। तो आज का भी प्रसाद किसी व्यक्ति ने स्पॉन्सर किया है, उन्होंने प्रायोजित किया है आज का, उसके लिए दान दिया है प्रसादम के लिए, पर उन्होंने अपना नाम नहीं बताने का हमसे अनुरोध किया है, तो इसलिए गुप्त दान है। और फिर भी हम उनके लिए 3 बार, 1 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के प्रार्थना करेंगे उनके लिए कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। साथ ही एक और माता जी ने भगवान से प्रेम वश वशीभूत होकर के उन्होंने सुभद्रा महारानी के लिए एक ज्वेलरी का पीस जो नाक में पहनते हैं माता जी लोग, यहाँ पर नथुनी बोलते हैं उसको उत्तर भारत में, तो नथुनी उन्होंने गिफ्ट किया है सुभद्रा महारानी के लिए सोने का। तो उनका भी हम, उन्होंने भी बोला है कि उनका नाम अनाउंस नहीं हो, तो उनकी इच्छा के कारण हम उनका नाम अनाउंस नहीं कर पाएंगे। उन माता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान करे उनको भक्ति के मार्ग पर वो प्रशस्त हो और भगवान उनको अपनी शरण में जगह प्रदान करे, उनका भी अभिनंदन करेंगे।
हरे कृष्ण। वैसे बहुत अच्छी बात है कि भक्त अपना नाम नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि जब भगवान को दान दिया जाता है और अगर उसका प्रचार कर दिया जाए तो उसका लाभ नहीं मिलता है। केवल भगवान ही नहीं, किसी को भी दिया जाए, ऐसा कहा जाता है एक हाथ से दान दे दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, वो सही दान होता है। लेकिन कोई मान प्रतिष्ठा के लिए अगर दान दिया जाता है तो उसका लाभ नहीं होता है। लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर प्रयास करते हैं उन भक्तों का नाम लेने के लिए। उसका कारण ये है कि ऐसा नहीं है कि वो भक्त मान प्रतिष्ठा चाहते हैं, कल से आप ऐसा मत सोचिएगा कि जिसका नाम अनाउंस हो वो मान प्रतिष्ठा चाहते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हम लोग और लोगों को भी, जैसे लोगों को यहाँ पर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सेवा का अवसर है, और फिर ये तो भगवान का मंदिर है, जिसने भी सेवा की है भगवान तो जानते ही हैं, तो फिर भक्त भी जान जाएँ तो कोई गलती नहीं है। तो इसलिए दोनों मार्ग सही हैं, जो नाम भी बताते हैं वो भी सही हैं और जिनके नाम नहीं बताए जाते वो भी सही हैं। तो हम जिन भी भक्तों ने ये सेवा की है बड़े आभारी हैं। ये वृंदावन का भाव है, वृंदावन में लोग रोज भगवान के लिए घी दूध सब लोग लेकर आते थे, जबकि ऐसा नहीं था कि वहाँ कोई कमी थी। नंद महाराज के 9 लाख गायें थी तो उनके यहाँ कोई दूध दही घी की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनका भाव था कृष्ण के लिए, तो ब्रजवासी लेकर आया करते थे। तो ऐसे ही आप लोग भी कुछ कुछ, जैसे कोई माता जी ने आज वो सुभद्रा देवी के लिए कुछ दिया, और कल बहुत सारे माता जियों ने सुबह से दोपहर से बड़ी सेवा की थी। कल आपने देखा होगा यहाँ पर बहुत सारे भोग भगवान को लगाए थे, हमें बताया गया 112 भोग भगवान को कल लगे थे शाम के समय, और ये सब तैयारियाँ मंदिर में नियमित आने वाले माता जियों ने की थी। तो हम उनके बहुत आभारी हैं कि उन्होंने इतनी मेहनत करके, हमने प्रार्थना की थी उनसे कि 108 भोग लगाएं, लेकिन उन्होंने अपने उत्साह में 4 और भोग लगा दिए हैं, 112। और आप सब भी ऐसे उत्सवों में भाग लीजिए, जैसे माता जी कुछ कुछ अपने अपने घर से कुछ बना कर लाए थे, 5-5, 6-6 भोग, तो इस तरह से ये हुआ। तो अगर आप सब भी भाग लेंगे तो जन्माष्टमी के दिन भगवान को 1008 भोग लगा सकेंगे हम लोग। तो ये सब आपकी ही सहयोग से होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद उन माता जियों का जिन्होंने इतने भोग बनाए। और वैसे नहीं, जब भी उत्सव होते हैं तो उसमें कई लोग पीछे काम करते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, जैसे हमारा किचन विभाग है, वहाँ पर लोग प्रसाद बनाते हैं दोपहर से आकर, अपना अपना कार्य छोड़कर आप ही जैसे लोग, तो वे लोग भी सेवा करते हैं भगवान की, हम उनके भी बड़े आभारी हैं। ये व्यवस्था करने के लिए बहुत सारे लोगों ने मेहनत की, जैसे यहाँ फूलों की सजावट देख रहे हैं, तो ये भी किसी ने मेहनत की, खुद आए, सब भक्तों ने किया। और इस मंदिर में एक व्यक्ति को छोड़कर बाकी सब बहुत सेवा करते हैं। तो देखिए ये सेवाएं हो रही हैं भगवान की। सुंदर कल ड्रेसिंग थी, आप लोग तो जल्दी चले गए होंगे, कई भक्त रात को 11-12 बजे तक रुकना पड़ा, सब साफ सफाई कर कर गए। और भी कई सारी सेवाएं हैं, सबका नाम तो नहीं ले सकते। तो एक भक्त को छोड़कर, या एक व्यक्ति को, भक्त नहीं कहना चाहिए, एक व्यक्ति को छोड़कर बाकी सब ने बहुत सेवा की, और वो व्यक्ति आप जानते हैं कि कौन है, यहाँ पे आपके सामने बैठे हैं। तो क्षमा चाहते हैं कि हमने कोई सेवा नहीं की कल, न भोग बनाया, न कोई व्यवस्था में भाग लिया, लेकिन बाकी सब ने बहुत सेवा की, इसीलिए हम बड़े आभारी हैं आप सबके। इसी तरह इस मंदिर में सेवाएं होती रहे तो ये कृष्ण का परिवार बढ़ता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। तो इसी प्रकार आप लोग हर रविवार को आते रहिए प्रोग्राम्स में, जो भी कार्यक्रम सारणी के अनुसार आपको बताए जाते हैं। और पुनः आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ पर दिनों दिन आए, 2 दिवस का प्रोग्राम में पूरे आए, और इस गौर पूर्णिमा के फेस्टिवल को, इस गौर पूर्णिमा महामहोत्सव को आपने सफल बनाया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गौरांग महाप्रभु हरे कृष्ण।
तो अभी कीर्तन होगा, आप सब खड़े हो सकते हैं, और जैसे कीर्तन शुरू होगा उसके जैसे आपको कहा जाए, तो वहां से आप लोग, पहले माता जी हैं वो लोग भगवान को झूला झूला के वहीं से बाहर निकलेंगे, और फिर प्रभु जी इसके लिए ये व्यवस्था होगी। कोई भीड़ मत कीजिए, सबके लिए है, समय भी है, तो आप लोग धीरे धीरे इसको करके फिर आगे प्रसाद की व्यवस्था है, तो प्रसाद ग्रहण करके जाइएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने, नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणी, विशेषा शून्यवादी असत्यादि प्रचारिणी, नमस्ते
जय श्री कृष्णा चैतन्या प्रभु नित्यानन्दा साधु गौर भक्तवृंदा चैतन्या जय श्री कृष्णा चैतन्या प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवि गौर भक्तवृंदा
Oh,